ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में सप्ताह हुई कार्रवाई की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का ये तीसरा सप्ताह था। इस सप्ताह सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को दोनों सदनों की बैठकें हुई। बृहस्पतिवार को रामनवमी के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित रही। वित्तीय कामकाज के लिहाज से यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहा और संसद ने वित्त विधेयक तथा अनुदान की अनुपूरक मांगों और उससे जुड़े विनियोग विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लोकसभा में आम बजट पेश किया था और उसी के साथ संसद में बजट पारित होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इस सप्ताह वित्त विधेयक पारित होने के साथ ही ये प्रक्रिया संपन्न हो गई। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इसके कारण भारत के सामने आई चुनौतियों पर लोकसभा में वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष से पैदा हुए अप्रत्याशित संकट का प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है, जिससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तत्पर है और देशवासियों को उसी तरह तैयार रहना होगा जिस तरह एकजुटता के साथ सबने कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला किया था। श्री मोदी ने कहा कि इस समस्या का समाधान कूटनीति और बातचीत से ही संभव है तथा भारत तनाव को कम करने और संघर्ष समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि पिछले एक दशक में ऊर्जा क्षेत्र में सरकार की तैयारियों के कारण आज हालात से निपटने में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री ने सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि इस युद्ध के कारण दुनिया में बने हालात का प्रभाव लंबे समय तक रहने की आशंका है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। इससे पहले लोकसभा में स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उसी दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कॉरपोरेट विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, जिसका मकसद सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 और कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करना है। ये विधेयक पेश किए जाने के बाद सदन ने वित्त मंत्री की अनुशंसा पर इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का फैसला किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी सांसदों की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि ये विधेयक 2 साल के विचार विमर्श के बाद लाया गया है तथा कॉरपोरेट विधि समिति में सभी पक्षों को सुना गया है। ये विधेयक छोटे उद्योगों, स्टार्टअप्स और किसानों की उत्पादक कंपनियों के लिए अनुपालन को आसान बनाने, कुछ आपराधिक अपराधों को जुर्माने में बदलने और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। उसी दिन गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि यदि पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के एक अधिकारी की आत्महत्या के मामले में प्रदेश के सांसद पत्र लिखकर दें तो वो इस मामले की सीबीआई जांच कराने का आदेश दे देंगे। सदन में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने यह विषय उठाया। उधर राज्यसभा में भोजनावकाश के बाद अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा हुई। कांग्रेस के नीरज डांगी ने भारतीय मुद्रा रुपए के अमरीकी डॉलर की तुलना में कमजोर होने और रसोई गैस संकट के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और आम आदमी पर पड़ने वाले प्रभावों का जिक्र किया। चर्चा शुरू करते हुए डांगी ने सरकार से ठोस कदम उठाने, आयात शुल्क को घटाने और जीएसटी दरों को कम करने का सुझाव दिया। चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक परिपक्व राजनीतिक नेता करार दिया। जनता दल एस प्रमुख देवेगौड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि विकास से खपत बढ़ेगी। तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले ने कहा कि श्रम एवं रोजगार, जल जीवन, आवास, पर्यटन, कौशल विकास और जनजातीय मामलों सहित कई मंत्रालयों के बजट अनुमान में कटौती की गई है क्योंकि आवंटित राशि पूरी तरह खर्च नहीं की जा सकी। आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत सिंह साहनी ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध का असर पूरी दुनिया पर है और कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे कीमतों में भारी वृद्धि हो सकती है। समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन ने भी विभिन्न मदों में आवंटित राशि के खर्च न होने पर चिंता व्यक्त की और कहा कि देश में स्वास्थ्य क्षेत्र का तो बुरा हाल है। भाजपा के मदन राठौर ने रसोई गैस संकट को लेकर विपक्ष को गलत दावे कर अफरा तफरी न फैलाने के विरुद्ध आगाह किया। भाजपा के भीम सिंह ने कहा कि यह विनियोग विधेयक विकास का विधेयक है जो विकसित भारत की राह प्रशस्त करेगा। चर्चा में कई अन्य सदस्यों ने भाग लिया लेकिन चर्चा अधूरी रही। इससे पहले सुबह उच्च सदन ने सभापति सीपी राधाकृष्णन के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनकी शहादत की वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि दी। मंगलवार को लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा जारी रही। ये चर्चा एक दिन पहले शुरू हुई थी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पश्चिम एशिया युद्ध का हवाला देते हुए कहा कि भारत पर भी बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि सरकार कॉरपोरेट जगत को बहुत रियायत दे रही है लेकिन अर्थव्यवस्था सरकारी खर्च की बदौलत चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नवीन जिंदल ने पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात की पृष्ठभूमि में कहा कि सरकार ने पहले भी प्रतिकूल परिस्थितियों में देश को संभाला है और वो इस बार भी संभाल लेगी। भाजपा के ही जगदम्बिका पाल ने कहा कि भारत में बनने वाले डेटा सेंटर से लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। उन्होंने कहा कि दुनिया में अमरीका और चीन के बाद वर्तमान में भारत ही ऐसा तीसरा देश है जो डेटा सेंटर स्थापित कर रहा है। चर्चा में कई सदस्यों ने भाग लिया। कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके प्रद्युत बोरदोलोई ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसे अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सदन को इसकी सूचना दी। उधर राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में छिड़े वर्तमान संघर्ष के कारण पैदा स्थिति से निपटने के लिए अधिकार संपन्न 7 नए समूहों का गठन किया गया है जो एलपीजी, आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अन्य विषयों का नियमित आकलन कर सुझाव देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इसके कारण भारत के सामने आई चुनौतियों पर अपनी ओर से वक्तव्य देते हुए कहा कि 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है तथा इस युद्ध ने विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए भी स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरक जैसे जरूरी सामान की नियमित आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पल पल बदलते हालात पर नजर बनाए रखे है और इसके प्रभावों से निपटने के लिए एक रणनीति के तहत काम कर रही है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद उच्च सदन में अनुदान की अनुपूरक मांगों पर एक दिन पहले शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया गया। चर्चा में समाज के हर वर्ग के विकास को अपनी प्राथमिकता बताते हुए सत्ता पक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार वित्तीय अनुशासन पर जोर देती है जिसके चलते आज भ्रष्टाचार से आम आदमी को राहत मिली है। वहीं विपक्ष ने कहा कि अगर 2014 के बाद वास्तव में विकास हुआ होता तो लोगों की समस्याएं अब तक हल हो चुकी होती और सरकार को भी पूर्ण बहुमत मिलता। चर्चा में विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया लेकिन चर्चा अधूरी रही। और अब आगे की कार्रवाई के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
भाजपा सांसद ने दावा किया कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के दौरान कभी भी बैंकों का संपत्ति गुणवत्ता मूल्यांकन नहीं किया गया और केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद बही खाता सही करने का काम किया गया। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक छोटे व्यापारियों, किसानों और बड़ी कंपनियों के बीच भेद पैदा करेगा। सपा सांसद ने कहा कि ये विधेयक आर्थिक असमानता बढ़ा सकता है और बैंकों की वित्तीय स्थिति को कमजोर कर सकता है। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि संशोधन विधेयक पर्याप्त रूप से सुदृढ़ नहीं है और इससे समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, इसलिए प्रस्तावित कानून को और मजबूत करने की जरूरत है। उधर राज्यसभा में उभय लिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया तथा सरकार ने आश्वासन दिया कि इस समुदाय के लोगों की गरिमा को बरकरार रखा जाएगा और उनके खिलाफ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। उच्च सदन में इस विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सभी सदस्यों ने उभयलिंगी समुदाय के लोगों के कल्याण को लेकर समान रूप से चिंता जताई। मंत्री ने कहा कि इस कानून का उपयोग केवल उन्हीं लोगों के लिए किया जाएगा जिन्हें वास्तव में सुरक्षा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक समुदाय के एक विशिष्ट वर्ग में ऐसी असुरक्षा का समाधान करने के लिए लाया गया है जो जैविक स्थिति के कारण गंभीर सामाजिक बहिष्कार का सामना करते आए हैं और जिनमें उनकी कोई गलती नहीं होती। मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कानून में बच्चों को हानि पहुंचाने से रोकने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने भाग लिया। इसके बाद सदन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। यह विधेयक विपक्ष के विरोध के बाद पेश किया गया और सदन ने इस संबंध में विपक्ष को नोटिस को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। ये विधेयक 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए अलग अलग सेवा नियम व्यवस्था के मौजूदा तंत्र की जगह विभिन्न CAPF बलों में कर्मियों को नियंत्रित करने वाला एक एकीकृत कानूनी ढांचा बनाने का प्रावधान करता है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए इससे संबंधित चिंताओं को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बलों के कर्तव्य शक्तियों और शासन उनके मौजूदा जनादेश के तहत बरकरार रहेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद की विधायी अधिकार का जोरदार बचाव किया और कहा कि संसद को कानून बनाने का अधिकार संविधान ने दिया है। शुक्रवार को आमतौर पर दोनों सदनों में गैर सरकारी कामकाज होता है, लेकिन इस बार दोनों सदनों में गैर सरकारी कामकाज नहीं हुआ और विधायी कार्य किए गए। लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक में संसद की एक समिति की सिफारिशों को शामिल किया गया है। विपक्ष के विरोध के बीच प्रसाद ने कहा कि विधेयक पर समिति में विस्तृत विचार विमर्श किया गया है और इसमें केवल छोटे अपराधों को ही अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले वर्ष 18 मार्च को जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश किया था जिसे संसदीय समिति को भेजा गया था। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने के प्रावधान वाले 3 विधेयकों पर विचार करने वाले संसदीय समिति को रिपोर्ट देने के लिए आगामी मॉनसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक का समय दिया गया है। इससे पहले 31 सदस्यीय संयुक्त समिति को तीनों विधेयकों पर विचार करने के लिए बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक का समय दिया गया था। सदन में दिवाला और शोधन अक्षमता संशोधन विधेयक 2025 पर आगे चर्चा हुई। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि कांग्रेस के शासन काल के दौरान बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियां NPA 11.5% थी जो मार्च 2025 में घटकर 2.25% रह गई। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश को विकसित बनाने और 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने ध्यान दिलाया कि विश्व भर में पश्चिम एशिया संकट के बाद विभिन्न देशों में तेल के दाम 30-50% बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें पेट्रोल पर लगने वाले उत्पाद कर को 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल पर लगने वाले 10 रुपए प्रति लीटर कर को 0 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गरीबों पर अधिक कर लगाने और अमीरों को इसमें राहत देने के आरोपों को सीतारामन ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि चाहे परोक्ष करों की बात हो या GST की बात हो, किसी में भी अमीर या गरीब के बीच भेदभाव नहीं किया गया। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।